तो एक दिन इंद्र जा रहा था, मैं इंद्र से लड़ने लग गया घमंड होने के कारण। कौन होता है इंद्र, मुझे वरदान मिला हुआ है, समय से पहले थोड़े कोई मार सकता है। ऐसा विचार करके मैं इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया और उसने मेरे सिर के ऊपर प्रहार किया। सिर जो है वो तो मेरे अंदर थोता तो है ही, ये जो है कबन धड़ थोता ही होता है, इसमें धस गया और पैर मेरे कट गए। मरा मैं नहीं, क्योंकि इंद्र ने भी ब्रह्मा जी की बात रखी और मैं मेरा कुरूप हो गया। फिर मैंने इंद्र से प्रार्थना की, मेरी भुजा उसने लंबी कर दी, अब इससे मैं खाता रहता हूँ। लंबी भुजाओं से मेरा निर्वाह होता है और मेरा मुंह जो है धड़ के अंदर आ जाने के कारण से एकमात्र मेरा धड़ ही धड़ रह गया, तो लोग मुझे कबंद के नाम से कहते हैं। इंद्र ने भी मुझे कहा कि देखो कबंद, जिस समय में राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे और तुम्हारी भुजा का छेदन करेंगे, तब तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। अतएव मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आज मेरी भुजा कट गई है। देखो राम, इस समय में मेरे पास विशेष ज्ञान कुछ काम नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो कि मेरे शरीर को जलाओ, मेरे शरीर को जलाओगे तब मुझे दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरे शरीर से मैं आपको बताऊंगा, उस समय में मैं आपकी सहायता करूंगा। और कुछ कुछ मुझे धुंधली याद आ रही है, संभवतः मैं आपका काम तो कुछ नहीं कर सकूंगा, स्वयं कुछ नहीं कर सकूंगा, परंतु आपको एक मित्र का जरूर मेल करा सकता हूं, जो मेल कराने पर तुम्हारा आगे का काम पूरा कर देगा। परंतु एक बात तो बताओ कि उस राक्षस के विषय में कि वो कहां का रहने वाला है, क्या करता है, उसका क्या नाम धाम है, ये सब मुझे बताओ तो सही, ये मुझे बताओ, उसके बाद मैं दूसरे शरीर में आकर तुमको बता देता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो सीता के हरण करने वाले राक्षस का नाम रावण है और वो जनस्थान से दंडकारण्य से उसको ले गया है। हम लोग केवल नाम मात्र जानते हैं, अब जो है आगे क्या है क्या नहीं इस विषय को हम नहीं जानते। राम जी ने भी ये बात कही कि हे कबंद, हम बड़े शोकाविष्ट हैं, सीता के लिए इधर उधर खूब दौड़ रहे हैं, परंतु अभी तक सीता के विषय में हमको इतनी जानकारी मिल पाई है कि रावण ने उसका हरण किया है। रावण कहाँ है, रावण क्या करता है, रावण किस देश में रहता है, रावण का क्या बल है, ये अभी तक हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। परंतु हे कबंद, तुमको हम जरूर जला देंगे, चाहे तुम हमको बताना चाहे न बताना, हमारा तो भाई इस प्रकार से तुम्हारा उपकार करना एक कर्तव्य बनता है। लक्ष्मण, एक बहुत बड़ा खड्डा खोद करके उसमें लकड़ियां स्थापित कर दो और उसमें कबंद के शरीर को डाल दो और फिर उसके बाद उसमें आग लगा दो। देखो हम तुम्हारा ये काम तो कर रहे हैं कबंद, लेकिन उसके बाद हमारी जरूर सहायता करना हो, क्योंकि सीता की खोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी काम है। इस प्रकार से कहने पर उसने फिर कहा कि राम, आप मुझे जलाओगे तो मुझे दिव्य ज्ञान के द्वारा मैं देख लूंगा, अभी मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं सब आपको उस समय में बता दूंगा। बिना शरीर जले हुए अभी तो मैं अपने ज्ञान के अंदर यूं ही दबा हुआ बैठा हूं, मेरा विज्ञान भ्रष्ट हुआ हुआ है, क्योंकि ऋषियों का शाप लगा हुआ है, जब शाप मुक्ति हो जाती है तब भाई एक उसमें स्वाभाविक दिव्यता आती है। किंतु यावन न यात्यस्तम, देखो सूर्य से पहले पहले मेरा, सूर्यास्त से पहले पहले आप दाह संस्कार कर दीजिएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार करने पर हमारी बुद्धि फिर काम नहीं करेगी और आगे हमको जो दिव्यता मिलने वाली है वो दिव्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर राक्षसों की वेला में वो जीवात्मा राक्षसों के पास रहता है और दिन में सूर्य की साक्षी में दाह संस्कार करने पर देवताओं के पास में, दिन के देवताओं के पास में, प्रकाशमान देवताओं के पास में वो जीव सुरक्षित रहता है। अतएव जितना जल्दी हो सके आप सूर्य की साक्षी में मेरा अग्नि संस्कार करवा दीजिए। फिर उसके बाद जो मैं आपको बताऊं उसके साथ संभवतः आप मैत्री कर लीजिए और जैसा भी मेरे ज्ञान में आए वो मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से कबंध ने जब ये बात कही तब उन्होंने लक्ष्मण जी ने एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा और उसमें खूब बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़े रख दिए और उसमें आग रख दी और फिर कबंध का शरीर रख दिया और उस कबंध का शरीर बहुत जल्दी जलने लग गया। कबंध के शरीर के अंदर चर्बी बहुत थी, वो घी का काम कर रही थी और वो चट 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 जलने लग गया। जलते जलते वो एक बहुत दिव्य रूप में अग्नि के अंदर ही प्रकट हुआ और उसके लिए एक बड़ा सुंदर विमान आया। उस विमान के आगे यू हंस का मुख लगा हुआ था। ऐसे विमान को देखा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, और उसका दिव्य स्वरूप देखा। चार उसकी भुजा है, वो किरीटी है, वो कुंडली है, बड़ा दिव्य उसका रूप। उसको देख करके अब कबंध ने कहा, हे राम मैं तुमको प्रणाम करता हूं। हे राम सुनो, राजा के पास छह युक्तियां होती है, साम दाम दंड भेद चार तो ये होती है और संधि विग्रह यान इत्यादि छह दूसरी चीजें होती है। संधि विग्रह यान आसन समाश्रय और एक और ऐसे करके छह ये चीजें होती है। माने कब शत्रु से संधि करनी चाहिए, कब लड़ाई करनी चाहिए, कब चढ़ाई करनी चाहिए, कब चुप रहना चाहिए और कब किस प्रकार से हमको कुछ परीक्षा करनी चाहिए, ये सब बातें राजा की बात होती है छह। और संसार की एक रीति है राम, क्या कि जो संसार के अंदर बुरी दशा को प्राप्त हुआ हुआ होता है उसको जब बुरी दशा वाला ही आपस में मिलता है तो इन दोनों की मित्रता स्वाभाविक हो जाती है। परिमृष्टो दशान दशांते न दशा भागेन सेव्यते। जिसकी दशा अच्छी नहीं होती उस आदमी की मित्रता खराब अवस्था वाले से बहुत जल्दी हो जाती है। दोनों की दोनों आपस में बहुत जल्दी मिल जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर के और जब वे दशाओं को सुधारने में लगते हैं तो एक दूसरे की सहायता मिल जाती है, क्योंकि वह एक दूसरे के दर्द को वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये बात मेरे दुख मेरे अंदर पड़ी हुई थी, ये बात इसमें भी ये बिचारे आते हैं, वो दुख को दुख जान करके और फिर उसके दूर करने में पूरे ढंग से लग जाते थे। एक सहायक को सहायता मिलती। मेरी बात पर आप विचार करके और जितना जल्दी हो सके आप ये काम कर लेना। देखो अब मैं दिव्य ज्ञान से देख करके आपको बताता हूं कि हे राम और हे लक्ष्मण, जब तक आप ये काम मेरा कहवा नहीं करोगे तब तक आपका काम सिद्ध नहीं होगा। अतः आप सुनो, सुग्रीव नाम का एक बानर है, वो सुग्रीव नाम का बानर ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा है। उसके पास में चार बहुत श्रेष्ठ बानर है और वो पंपा सरोवर के पास में है, वहां पर वो रहता है। उस सुग्रीव नाम के बानर के साथ तुम्हारी मित्रता होनी चाहिए। सुग्रीव सच बोलने वाला है, सुग्रीव विनयी है, सुग्रीव धैर्यवान है, सुग्रीव बुद्धिमान है, सुग्रीव अपने काम में बड़ा निपुण है, सुग्रीव बल पराक्रम से युक्त है और सुग्रीव राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, उसके भाई ने उसको धक्का देकर के निकाल दिया। वो राज्य से भ्रष्ट हो गया है और उसकी स्त्री उसके भाई ने रख रखी है तो वो स्त्री से भी दुखी हुआ हुआ है, तो राज्य से भी दुखी है और स्त्री से भी दुखी है और भाई से दुखी है और वो ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा है। राम तुम्हारी और उसकी कई अंश में तो समानता मिली, आप भी राज्य से निकाल दिए गए, आप भी स्त्री के लिए रोते हो, इसलिए कई मायने में आप और सुग्रीव मिले हुए हो, तो आप उनके साथ मित्रता करो। शोक करने से कुछ नहीं होगा राम, आप इक्ष्वाकु वंश के बड़े श्रेष्ठ राजा हो, तब भी आप पर भी जब ये काल आ गया, आपके ऊपर भी जब इस प्रकार से प्रारब्ध का प्रहार होता है तो दूसरे लोगों का कहना ही क्या है, जल्दी करो। सुग्रीव के साथ मित्रता करने में देरी है और सुग्रीव का काम जल्दी बनाओ। देखो राम, जब हमारा मित्र स्वयं किसी बात से दुखी हो रहा है तो पहले हम यदि उसका दुख दूर करेंगे तब वो सुखी होगा। सुखी होने पर उसके पास में एक वैभव होगा, उसके पास सुख का एक बल होगा, उस बल के द्वारा वो हमारी सहायता करेगा। और हम यदि पहले उसकी कोई हम उससे पहले सहायता लेना चाहें कि वो पहले हमारी सहायता करे, तो भाई पहले वो सहायता हमारी करेगा कैसे, वो स्वयं दुखी है तो हम भी तो दुखी हैं। तो तुम्हारा दुख और उसका दुख दोनों को तोल लो, तोल करके तुम में जिसका दुख पहले दूर हो सकता हो उसका दूर करो। मेरे हिसाब से सुग्रीव का दुख पहले दूर करना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव कृतज्ञ है। सुग्रीव मर्जी आए जैसा रूप धारण करने वाला है। सुग्रीव को सहायता की बड़ी आवश्यकता है और यदि आपने उसकी थोड़ी सहायता कर दी तो वो आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। वो सुग्रीव ऋक्षराज का बेटा है और सूर्य से पैदा हुआ है। बाली के साथ उसका बैर बंधा हुआ है और वो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आता नहीं है, अतएव अपने प्राण बचाने के लिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर है। और राम वो स्वयं भी चाहता है कोई मुझे सहायक मिले, कोई मेरी सहायता करे, वो स्वयं सहायता के लिए तड़प रहा है। जब तक सूर्य तपता है और जब तक नदियां वगैरह सारे संसार में है अनविश्य वानरी सार्धम, तब तक नहीं देखो, जहां तक सूर्य तपता है, जहां तक नदियों की गतियां हैं, जहां तक वृक्ष है, जहां तक पर्वत है, जहां तक पृथ्वी है, वहां तक एक एक कोने को ये सुग्रीव ढूंढ ढूंढ करके सीता के विषय में आपको ज्ञान करा देगा। ऐसे इसके पास में बानर है, वे बानर स्वयं जाएंगे सीता की खोज कर लेंगे। ऐसे महान भीम शरीर वाले इसके पास में बड़े बलवान राक्षस है, तो तुम्हारे वियोग में कहीं भी सीता बिचारी शोक तो करती होगी, उस सीता को ये ढूंढ देंगे। राम अब तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे आप आज्ञा दो और मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। कबंद ने फिर कहा कि देखो राम, जाते जाते आपका एक काम और कर जाता हूँ। अभी आपको ये भी पता नहीं पंपा सरोवर का रास्ता कौन सा है, ये यहाँ से मैं आपको इशारा करता हूँ, जहाँ पर बहुत से वृक्ष और लताएं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, दक्षिण का और पश्चिम का जो हिस्सा, इधर से आप जाइए। ये आपको आगे जाकर जामुनों का, पनसों का, प्रियालों का, बटों का एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा। वहाँ पर बहुत अश्वत्थ के वृक्ष मिलेंगे, वहाँ पर आपको तिलक नाम के वृक्ष मिलेंगे, अशोक वृक्ष मिलेंगे, इनके ऊपर खूब पुष्प आए हुए मिलेंगे। इन सब वृक्षों को पार करते हुए आप जाना, और कई कई ऐसे ऊंचे वृक्ष हैं जिन ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके अर्जुन, ये आपके अर्जुन, ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण अर्जुन आदि वृक्षों पर चढ़ करके और आपके लिए बड़े मीठे मीठे और दिव्य फल लाकर देंगे। उन फलों को आप जरूर खाना, और आप और लक्ष्मण दोनों उन फलों को खाओगे तो जो है उससे आपको बड़ा बल मिलेगा। फिर उसके बाद आपको नंदन वन के समान और विशाल वन मिलेगा, वहां पर सब ऋतुओं में सब प्रकार के फल होते हैं। उन फल भार से वृक्ष नीचे हुए आपका स्वागत सा करेंगे। वे ऐसे जंगल है जहाँ पर प्राय करके लोग जाते नहीं है। फिर उसके बाद आप चलते रहोगे, पर्वतों को, वनों को लांघते 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 बहुत दूर चले जाओगे, तब आपको एक बड़ी सुंदर तलैया दिखेगी, वही पंपा सरोवर है। क्या बताएं, पंपा सरोवर का जल एकदम मीठा है, पंपा सरोवर का जल एकदम ठंडा है। पंपा सरोवर की भूमि है वो बिल्कुल समान है, पंपा सरोवर के अंदर कोई काई वगैरह नहीं है। पंपा सरोवर के अंदर कमलों की खूब जो है शोभा हो रही है। हंस, कारंडा, प्लाव, क्रॉन्च कुरर ये हरदम वहाँ गूंजते रहते हैं। ऐसी सुंदर पंपा सरोवर है, उसका स्वरूप आप देखोगे तो उसको छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। वहाँ पर आप पक्षियों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना, पक्षियों को आप चीजें खिलाओगे, पक्षी वो खाएंगे, खाएंगे तो भाई वो पक्षी आपको भीतर से आशीर्वाद देंगे। देखो आप दूसरे को कुछ सहायता पहुंचाओगे तब वो दूसरों का आशीर्वाद काम आता है। तो द्विजान भक्षयी शतः, उन पक्षियों को आप बड़ा अच्छा फल जो है देना, वहाँ के फल लेकर के आप अपने धनुष के अग्रभाग में रख करके अग्नि में पकाना और फिर उन फलों को आप खाना। कई ऐसे फल हैं जिनको आप छिलका उतार करके खा लेना, कई ऐसे फल हैं जिनका छिलका नहीं उतारना, ऐसे फलों का तुम भक्षण करना। खैर लक्ष्मण जी आपकी सेवा में है ही, तो इन लक्ष्मण जी के ऐसा काम करने पर आपके अंदर ज्यादा प्रीति बढ़ेगी। और फिर उसका पवित्र जल पीना पंपा सरोवर का, पंपा सरोवर का लक्ष्मण जी स्वयं ऐसा जल लाएंगे कमलों के अंदर से जो जल है जो झर झर करता रहता है, तो उस जल के अंदर कोई भी कमी रही होगी तो वो कमलों के द्वारा छना छना आएगा और कमलों की उसमें विशेष सुगंधि रहेगी। ऐसे आप जल को पिएंगे और जल को पी करके फिर आप पंपा सरोवर की शोभा है उसको आप देखोगे, लक्ष्मण को आप दिखाओगे, लक्ष्मण आपको दिखाएगा, वहाँ की शोभा देख देख करके आप सारा कष्ट भूल जाओगे। वहाँ पर स्थूलान पीतांश्च पंपायाम द्रक्षसी त्वम नरोत्तमे, वहाँ पर जो है पंपा सरोवर पर कई ऐसी ऐसी चीजों को देखेंगे जो बड़े आश्चर्य की चीज है, और उसका पवित्र जल पीने से आपका शोक दूर होगा, क्योंकि उस जल का बहुत श्रेष्ठ पुरुषों ने सेवन किया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित वस्तु होती, उस वस्तु में स्वाभाविक ही पवित्रता होती है। और नतानी कश्चित माल्यानी तत्रारोपयिता नरे, वो इतना निर्जन स्थान है कि वहाँ के फूलों को कोई भी व्यक्ति पहनता नहीं, माला वगैरह के पहनता नहीं है। और वहाँ पर मतंग ऋषि के शिष्य है, वो वहाँ पर बराबर रहते हैं। मतंग ऋषि के शिष्य थे, वे शिष्य खूब सा फल फूल लेकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, तब उन शिष्यों के शरीर से पसीना निकला, उस पसीने की बूंदे जमीन पर गिरी, जमीन पर गिरने से वे ही फूल हो गए और वो फूल सब जगह उस वन को सुवासित करती है। फिर और आगे तुम जाओगे तो एक आपको छोटी सी झोपड़ी मिलेगी, टूटी फूटी झोपड़ी मिलेगी, उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माई आपको दर्शन देगी, वह है शबरी, बहुत परिश्रम कर रही है वो शबरी, आपका बहुत दिनों से शबरी आपकी प्रतीक्षा भी कर रही है। उस शबरी के पास में आप जाओगे, शबरी को आप जरूर दर्शन देना। पंपा सरोवर पर आपका जितना काम बनेगा उतना आपका और कहीं काम बनने वाला नहीं है, इसलिए आप वहां जाइए। इस शबरी ने बड़ा भारी ज्ञान प्राप्त किया है, इस शबरी के पास का जितना वन है ये वन सब मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बड़ा विचित्र जो है ये वन है। और पंपा सरोवर के ठीक दक्षिण की ओर बड़ा सुंदर ऋष्यमुख पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर पंपा सरोवर के अंदर आने वाले छोटे छोटे हाथी जब चिंगाड़ते हुए जल पीते हैं तो ऋष्यमुख पर्वत के शिखर तक उनका शब्द आराम से सुनाई देता है। देखो राम, ये ऋष्यमुख पर्वत भी बड़ा विचित्र पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर कोई जाकर सो जाए और उसको जो सपना आए वो सपना दूसरे दिन सच्चा हो जाता है, और यदि कोई बुरी नीयत वाला आदमी वहाँ जाए और वहाँ सोए और उसकी नीयत में बड़ी खराबी है तो राक्षस लोग उसको वहाँ से सोते हुए को उठा करके और उसको खा जाए, उसको वहाँ सोने नहीं दे, उसको उठा के ले जाए उसको, ऐसा वो विचित्र ऋष्यमुख पर्वत है। इसीलिए उस पर्वत पर जाकर लोग अपने संकल्प को खराब नहीं करते हैं। जाओ राम, पंपा सरोवर बड़ा श्रेष्ठ है और वहाँ मतंग आश्रम के पास रहने वाले महात्मा लोग हैं, उन महात्माओं के कपड़े अभी तक भी सूख रहे हैं, जो गीले थे वो अभी तक सूखे नहीं है, सूख रहे हैं अभी तक। वो आश्रम तो थोड़ा थोड़ा खाली सा ही है, परंतु वहाँ की बड़ी विचित्र विशेषता है, वहाँ के फल बड़े दिव्य हैं, वहाँ की वायु बड़ी सुगंधित है, रीछ है, हाथी है, ये सब वहाँ पर बराबर आते रहते हैं। राम ऐसा बड़ा विचित्र वो पंपा सरोवर, वहाँ जरूर जाओ और वहाँ बैठ करके और शिला पर बैठ करके तुम आगे की कोई योजना बनाओ। और देखो बहुत फल फूल वाला है, वहाँ पर जाकर बांदरों के साथ तुम्हारी मित्रता होगी और वो मित्रता तुम्हारी जगत प्रसिद्ध मित्रता होगी। सारे संसार में उस मित्रता के विषय में लोग खूब बखान करेंगे कि मित्रता हो तो राम और सुग्रीव जैसी हो। अब तुम अवसर को मत चूको और उधर जाओ। कबंद ने इस प्रकार से उनको कहा और स्वयं दिव्य रूप के अंदर उनको देखते देखते ही विमान में बैठ करके और आकाश में चला गया। जाते जाते फिर उसने कहा कि राम जल्दी जाओ, मैं फिर आपको कहता हूँ कि सुग्रीव के पास जाने से ही आपका काम बनेगा, और कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से राम जी महाराज ने सुग्रीव के कबंद की बात सुनी और सुग्रीव की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। राम जी महाराज को संतोष हुआ कि लक्ष्मण कुछ तो हमको राह मिली, कुछ तो हमको दिशा मिली कि हमको अब आगे क्या करना है। चलो लक्ष्मण, मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ, परंतु लक्ष्मण कब पंपा सरोवर आएगा, कब सुग्रीव मिलेगा, कब वो सीता को ढूंढेगा, कब सीता मिलेगी, बहुत लंबा रास्ता है, इतने दिन कौन जिएगा। लक्ष्मण यदि मैं मर जाऊं तो सीता की खोज तुम जरूर करना। लक्ष्मण यदि मैं मर जाऊं सीता के बिना तो तुम्हारे पास शक्ति ना हो तुम भरत को जरूर कहना। भरत के पास में शक्ति है, सेना है, और भरत सीता को जरूर खोज करने के लिए तुम्हें सहायता देगा। लक्ष्मण क्या बताऊं, इतने बड़े विशाल वन में चलता ही रहना पड़ेगा और सीता के लिए हमको इतना परिश्रम उठाना पड़ रहा है, कितना कष्ट दिया है। देखो हरने वाले ने तो थोड़ी देर में ही सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको ढूंढना, उसको प्राप्त करना, उसके लिए कितनी परेशानी हो रही है। पापी आदमी ने तो पाप थोड़ी देर में कर लिया, लेकिन धर्मात्मा पुरुष को उसको उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। ऐसे वो बातें कर रहे थे, बातें करते करते पंपा सरोवर आ गया। पंपा सरोवर आया तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अपने को तो वो कुटिया देख ली है, वो कुटिया वो बूढ़ी शबरी है, वहां पर जाना है। तो वो पास में कुटिया भी दिखी आई। अब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया के वहां गए तो शबरी अपने आसन से खड़ी हो गई और राम और लक्ष्मण को पहचान करके उनको प्रणाम करने लगी। राम ने बड़े मुस्कुराते हुए ढंग से कहा, क्यों माता जी, आपकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है, आपने क्रोध को जीत लिया है ना, आपको यहाँ खाने पीने की सब सामग्रियां मिलती है ना, आपके नियम उपनियम सब पालित होते हैं ना, आपको यहाँ पर अपने मन चाहा सुख मिलता है ना, आपने जो अपने गुरुजनों की सेवा की उसका फल बराबर मिल रहा है ना। हे माता जी, आप अपने मन की स्थिति बताइए, हमारी इस विषय में आपके लिए क्या सहायता हो सकती है, वो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। सबरी राम जी को और लक्ष्मण जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के और वो सबरी जो है वो राम जी से कहने लगी, आज आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी तपस्याओं की सिद्धि आपके दर्शन करने मात्र से मिल गई, मैंने जो अपने गुरुजनों की सेवा की पूजा की उसका फल आज आपके दर्शनों से मुझे प्राप्त हो गया। तपस्या का अंतिम फल आपके दर्शन करना होता है, वो मुझे मिल गया। अब मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, आप दोनों के मैंने दर्शन कर लिए, मैं निहाल हो गई, मैं अब अक्षय लोकों को प्राप्त होंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे राम, जब आप चित्रकूट में आए हुए थे उस समय मेरे गुरुदेव मतंग ने कहा था कि राम चित्रकूट तक आ गए हैं, लेकिन मेरी अब आयु समाप्त हो रही है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरे आश्रम में राम जरूर आएंगे, तुम उनका जरूर स्वागत करना, वो तुम्हें बहुत बड़े विचित्र लोक प्रदान करेंगे, तुमको वरदान प्रदान करेंगे। इतना कहकर मेरे गुरुदेव तो चले गए और मैं आपकी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हूँ। राम जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और राम जी ने कहा कि देखो, आपके विषय में तो हमको कबंध ने बताया था, इसलिए हमको पता चला है कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। शबरी ने कहा, हे राम, देखो ये सामने जो आपको जंगल दिखाई देता है, ये मतंग वन है, इसी मतंग वन में से होकर के आप आए हो। इस मतंग वन में हमारे गुरुजन रहते थे, उन्होंने इस वन को खूब अच्छे ढंग से रखा है, अपनी तपस्या से सुरक्षित रखा है, कभी कोई राक्षस लोग यहाँ मतंग वन में कोई उपद्रव नहीं कर सके, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ऐसा ही प्रभाव रहा। गुरुदेव ने यहाँ अपने आश्रम के आगे एक बहुत बड़ी चौकी बनाई रखी थी, उस चौकी के ऊपर वे विराजमान होते थे। उनके तपस्या का तेज इतना विलक्षण था कि राम उस तेज के कारण से सब दिशाओं में बड़ी शांति रहती थी। और यहाँ जो ऋषि मुनि रहते हैं, अभी भी जो रहने वाले हैं, वे ऋषि मुनि बड़े आनंद के साथ, निर्भयता के साथ रहते हैं। इन ऋषि मुनियों को दंडकारण्य होते हुए भी राक्षसों का भय नहीं है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक राक्षस लोग सीमा में आ नहीं सकते हैं। यहाँ के फूल कितने ही दिन हो जाए, बरस बीत जाए, तो भी मुरझाते नहीं है। यहाँ के वृक्ष कभी फल ही नहीं होते, सदा ही फल देते रहते, ये नहीं कि समय नहीं है तो कैसे हो। यहाँ तो पोष माघ में भी आम के फल लगते हो, इसलिए यहाँ पर सब ऋतुओं में सब प्रकार के फल होते हैं। अच्छा ठीक है राम, अब दर्शन हो गए, मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लिया, अब मैं आपके सामने शरीर छोड़कर के जाना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो तपस्या का कैसा प्रभाव है, मतंग ऋषि का कैसा प्रभाव है कि आज भी उनके कारण से यहाँ पर वृक्षों के अंदर कभी सूखापन नहीं आता है। राम जी ने शबरी से कहा कि ठीक है माता जी, अब आप जैसा भी जाना चाहे, जहाँ चाहना जाना चाहे, आप आनंद से पधारे, आपने मेरी बड़ी पूजा की है। फिर जो है उसने अपनी जटा वटा सब बना करके और कालामृत का चर्म पहन करके राम जी का उसने ध्यान किया, और ध्यान करके अपने अंदर ही अग्नि का संकल्प करके और फिर वो स्वर्ग में चली गई। बड़ा दिव्य उसके आभूषण है, दिव्य वस्त्र उसके हैं, और बहुत ही दिव्य उसका स्वरूप हो गया और वो स्वर्ग में जाकर आनंद के साथ रहने लगी। जब ये शबरी वहां से चली गई, तब उसके बाद धर्मात्मा श्री राम लक्ष्मण को साथ में लिए लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि देखो अब सुग्रीव के साथ कैसे मित्रता हो, कहाँ सुग्रीव रहता है। दृष्टो मया आश्रम है सौम्य, देखो देखो लक्ष्मण ये आश्रम कितना सुंदर है इनका, यहाँ पर मृग और हिरण दोनों एक साथ, सिंह और हिरण दोनों एक साथ रहते हो, कैसा ये बैर भाव से रहित आश्रम है। आज अपने पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कल्याण हो गया। लक्ष्मण थोड़ा यहाँ आने पर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। लक्ष्मण कुछ मेरे मन में प्रसन्नता की लहर ये बता रही है कि अब आगे कुछ शुभ होने वाला है, पर क्या शुभ होगा, सीता तो ऐसे मिलने वाली नहीं है, अभी तो सीता न जाने कहाँ है, बहुत दूर है, पर ये मन में प्रसन्नता क्यों आई। लक्ष्मण तुम कहते थे कि शोक मत करो, यहाँ आते ही मेरा शोक अपने आप दूर हो गया। चलो ये सामने ऋषिमुख पर्वत दिखाई देता है, हो कबंध ने बताया वो धर्मात्मा सुग्रीव यही रहता होगा, बाली के भय से यहाँ उसने निवास कर रखा है, इसके पास में चार बानर है। तो एक काम करो लक्ष्मण, तुम स्वयं चले जाओ, तुम जाकर पर्वत पर जाकर लक्ष्मण सुग्रीव से बात करके आओ, तुम बात करने में बड़े निपुण हो, मैं यहां बैठा बैठा सीता के वियोग में सीता का चिंतन करूंगा, तुम जाओ। आश्रमात् तो ततः तस्मात् निष्क्रम्य सह विषाम पति आज गाम ततः पम पम पाम। लक्ष्मण जी